ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस तथा सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार और सुझाव साझा किए। श्री मोदी ने ओडिशा में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा में भारत के विकास को बाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विरोधी ताकतें, पारंपरिक चुनौतियां जैसे सीमा पार आतंकवाद और तस्करी, भीतरी इलाकों में कट्टरपंथी गतिविधियां तथा वामपंथी उग्रवाद जैसे विषय शामिल थे। समझा जाता है कि श्री मोदी ने पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिए हैं, जिन्हें अगले 1 साल में लागू करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भुवनेश्वर में सम्मेलन का पहला दिन महत्वपूर्ण रहा। चक्रवाती तूफान फेंजल कल रात तमिलनाडु और पुदुचेरी तट के निकट कराईकल तथा महाबलीपुरम पहुंचा। रात 10:30 से 11:30 के बीच चक्रवात उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तट से गुजरा। उस समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान अब पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसके असर से तेज बारिश के कारण कल चेन्नई हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद हवाई अड्डे को फिर से संचालित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच चक्रवात फेंजल के कारण पुदुचेरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 100 से अधिक लोगों को सेना की चेन्नई गैरिसन बटालियन के जवानों ने सुरक्षित निकाला है। ये बचाव अभियान जिला प्रशासन के सेना से किए गए अनुरोध के बाद शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य में महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में इस बार 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ को भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का संगम बताते हुए श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रमुख राजमार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट तथा सुरक्षा तंत्र लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस, रिकवरी वाहन, पेट्रोलिंग यूनिट तथा मेडिकल और ट्रैफिक सहायता चौकियों जैसी अतिरिक्त सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र में नव निर्वाचित महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जबकि शिवसेना, शिंदे गुट के 57 और एनसीपी की 41 सीटें हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का प्रमुख नामित किया है। श्री पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि काश पटेल एफबीआई के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि काश शानदार वकील, जांचकर्ता और अमरीका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने तथा अमरीकी लोगों के कल्याण में बिताया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने आज नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत से संपन्न खूबसूरत राज्य नागालैंड वीरता की भूमि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि नागालैंड का अछूता प्राकृतिक वैभव, जीवंत संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरा सामंजस्य वास्तव में मनमोहक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आज इसकी स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने कहा कि ये बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले आज दोपहर बाद लखनऊ में खेले जाएंगे। वहीं एशिया कप में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज कोरिया से होगा। इससे पहले ओमान के मस्कत में पूल ए के मैच में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 16-0 से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही भारत 9 अंक लेकर पूल ए में शीर्ष पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।